क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमारे ब्रेन को फुल कैपेसिटी में काम करने से रोकती है। जैसे कि हम लोग फ़ोन करते करते ड्राइव करते हैं, पर हमें यह नहीं पता कि जिस चीज़ में हमें अटेंशन चाहिए, जिस चीज़ पर हमें फोकस चाहिए, उस चीज़ को ब्रेन मल्टीटास्क नहीं कर सकता। आजकल हमने हाई स्ट्रेस्ड वर्किंग एनवायरनमेंट बनाया है क्योंकि आजकल एक वर्कहॉलिक रहना एक जैसे ट्रेंड बन गया है। लेकिन हम इस चीज़ को भूल रहे हैं कि जितना दिमाग हमारा स्ट्रेन में रहेगा, जितना दिमाग हमारा स्ट्रेस में रहेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी इन कंपेयर टू द ब्रेन विच इज नॉट सो स्ट्रेस्ड। इन केस अगर हमें कोई ऐसा एजुकेशन एनवायरनमेंट बनाना है जो कि हमारे ब्रेन को परफेक्टली वर्क कराने वाली एनवायरनमेंट के एकदम अपोजिट हो, तो हम लोग कुछ ऐसे एजुकेशन क्लासरूम्स बनाएंगे जो अभी हैं कॉलेज में या स्कूल्स में। अब बदकिस्मती से जो ब्रेन साइंटिस्ट है उनका हार्डली कोई कॉन्वर्सेशन होता है टीचर्स, बिजनेस प्रोफेशनल्स और इवन CEOs से, जिसके वजह से हमें न्यूरोसाइंस की प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। तो इस लूप में वापस आने के लिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमारा ब्रेन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही फुल कैपेसिटी पे वर्क करता है, जो कि आजकल के एनवायरनमेंट से हमें नहीं मिलता है। तो इस बुक में 12 ऐसे रूल्स की बात की गई है जिसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके इस लूप के अंदर वापस आ सकते हैं और अपने ब्रेन को बेस्ट कैपेसिटी पे काम करा सकते हैं। तो इस बुक में 12 ब्रेन रूल्स हैं, बट हम 5 मेन रूल्स को डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। जिसमें से पहला है वर्कआउट या फिर मूवमेंट। सिविलाइजेशन जिसने हमें जीने का एक तरीका दिया, हमारी सोसाइटी को एक फॉर्मेट दिया, एक स्ट्रक्चर दिया, बट साथ में ये अपने साथ बहुत सारे नेगेटिव ऐसे इम्पैक्ट भी लेके आया जो कि हमारे मेंटल एंड फिजिकल लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है। ज़रा याद कीजिए अपने एंसेस्टर्स को या फिर अपने पूर्वजों को जो कि दिन में 11-11, 12-12 मील चला करते थे। लेकिन अगर वहीं पर हम आज की ज़िंदगी देखें जहाँ पर हम वर्क स्टेशन पे या फिर स्कूल कॉलेज में 8-9 घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं या फिर काम करते हैं, और यहीं पर ज़रा सोचिए अगर हमारे पूर्वज भी ऐसे 8-9 घंटे बैठ कर काम करते तो क्या होगा, शायद जल्दी किसी का शिकार बन जाते। कहने का मतलब यह है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत जल्दी बदला है, फ्रॉम फिजिकल लाइफस्टाइल टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जिससे हमारे फिजिकल एज वेल एज मेंटल लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर हमें अपनी बॉडी और मेंटल हेल्थ को वापस रिवाइव करना है तो हमें शायद से इतिहास को वापस दोहराना पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जंगलों में वापस भटकते रहे शिकार की खोज में। कहने का मतलब यह है कि हमें बस अपनी ज़िंदगी में फिजिकल मूवमेंट को वापस लाना पड़ेगा। दूसरी बात है इनफ स्लीप। नाउ इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक रिसर्च किया गया जहाँ पर जो टॉपर्स होते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल स्टूडेंट्स होते हैं, उनको 7 घंटा वीकडेज में और 40 मिनट ज़्यादा इन द वीकेंड्स में दिया गया। मतलब वो जितना सोते थे उससे बस 40 मिनट या 50 मिनट ही कम स्लीप दिया गया। इससे पता चला कि उनके मार्क्स जो कि टॉप 10% में आते थे, उनके मार्क्स बॉटम के 9% स्टूडेंट्स से मैच होने लग गए। मतलब सिर्फ स्लीप को कम करके एक टॉपर्स को एवरेज बनाया जा सकता है। ऑल्सो स्लीप से हमारी कॉग्निटिव इन्हांसमेंट होती है, हमारे सोचने की या फिर हमारे फोकस करने की एनर्जी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं कि स्लीप सिर्फ स्टूडेंट के लाइफ को अफेक्ट करता है, अगर हम स्लीप को प्रॉपरली मेंटेन कर पाए तो हमारी वर्क क्रिएटिविटी भी बहुत हद तक एनहांस हो पाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कितने घंटे का स्लीप एफिशिएंट स्लीप माना जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेगी कि हमारी बॉडी को कितनी स्लीप सफिशियंट रहेगी, बट देखा जाए तो 8-9 hours ऑफ स्लीप इज सफिशियंट। तीसरी बात है मल्टीटास्किंग। इसको इलस्ट्रेट करने के लिए जनरली हम देखेंगे कि दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होते हैं जो दिन भर फ़ोन में लैपटॉप में लगे रहते हैं और उनके बहुत सारे टैब्स ओपन रहते हैं, बहुत सारे मतलब दे आर मल्टीटास्कर्स। तो उनको रिसर्चर्स ने नाम दिया हैवी मीडिया मल्टीटास्कर्स, जो कि दिन भर लगे रहते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते फ़ोन को या फिर लैपटॉप्स को, उनको नाम दिया गया लाइट मीडिया मल्टी यूजर्स। मतलब ज़्यादातर वो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स को उसी टाइम यूज़ करते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, ना ही हद से ज़्यादा बेफालतू के लगे रहने। तो इन दोनों में रिसर्च करवाया गया, इन दोनों में कुछ टेस्ट लिए गए जिनमें रिसर्चर्स ने क्या किया, जो हैवी यूज़र्स थे उनको एक पर्टिकुलर काम दिया और साइड में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रखे। ऑन द अदर हैंड कुछ लाइट यूज़र्स थे उनको भी सेम काम दिया और डिस्ट्रैक्शंस दिए। तो आपको अगर मैं पूछूं इन दोनों में से किसने बेटर परफॉर्म किया होगा, आपकी तरह मैंने भी सोचा, इवन साइंटिस्ट लोगों को भी यही लगा कि जो हैवी यूज़र्स थे वो लोग बेटर परफॉर्म करेंगे क्योंकि उनको आदत है बहुत सारे काम साथ में करने के, मल्टी टैब्स ओपन करके, तो उनका फोकस हर जगह रहता है, राइट। उनको भी ऐसा लगा कि मल्टी यूज़र्स जो हैं, जो हैवी यूज़र्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। यह पाया गया कि जो लाइट यूज़र्स थे उन्होंने हैवी यूजर्स को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दी, क्योंकि इसके पीछे भी ये लॉजिक है कि जो लाइट यूजर्स हैं वो लोग एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस करते हैं और उनके दिमाग में जो डिस्ट्रैक्शन है वो उतनी नहीं चलती, मतलब जो दूसरी चीज़ें हो रही है उस पर वो लोग उतना फोकस करते नहीं। ऑन द अदर हैंड जो मल्टी यूजर्स हैं उनके दिमाग में एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उनसे उनका जो अटेंशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था अलग अलग चीज़ों में, तो इसके वजह से वो लोग एक चीज़ पे प्रॉपरली फोकस कर नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनका परफॉर्मेंस भी कम हो रहा था, गिर रहा था लाइट यूजर्स के कंपेयर। इसके बाद आता है रिपीट। यहाँ पर साइंटिस्ट एंथनी वैगनर ने एक टेस्ट किया जहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट्स लिए गए, ठीक है ना, दो ग्रुप्स बनाए गए स्टूडेंट्स के, वहाँ पर एक ग्रुप ए है और एक ग्रुप बी। तो ग्रुप ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ वर्ड्स दिखाए गए, ग्रुप बी में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्ड्स दिखाए गए, उनको बोला कि इन्हें याद करें। लेकिन याद करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया उसमें यह था कि जो ग्रुप ए का स्टूडेंट्स थे उनको बहुत सारे रिपीटेशंस दिए गए वर्ड्स के, मतलब बहुत बार रिपीट करने थे उन वर्ड्स को। ऑन द अदर हैंड जो ग्रुप बी के स्टूडेंट्स थे उनको वो वर्ड्स पहले दिखाए गए, फिर उन्हीं वर्ड्स को कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ देर बाद फिर से उन वर्ड्स को दिखाया गया, फिर से कुछ देर बाद उनको फिर से वर्ड्स दिखाए गए, मतलब ऑन ए इंटरवल ऑफ टाइम उनको कुछ टाइम पीरियड के अंदर उन वर्ड्स को दिखाया गया। तो अब आपको क्या लगता है कि दोनों ग्रुप में से किन को वो सारे वर्ड्स याद रहेंगे? ऑफकोर्स जो बी ग्रुप के लोग थे उन्होंने बेटर किया इस चीज़ में। ना इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक मशीन है जिसका नाम है fMRI मशीन। ना इसमें होता क्या है कि हमारे लेफ्ट इन्फीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को देखता है कि एक्टिव कब हो रहा है। तो उसमें ये पाया गया कि उनका लेफ्ट इन्फीरियर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव था और वो लोग ज़्यादा वर्ड्स रिमेंबर कर पा रहे थे एज कम्पेयर टू ए विथ मोर एक्यूरेसी। फिर आता है एक्सप्लोर। अब यहाँ पर हम बेबीज़ को अगर देखें या फिर हम छोटे बच्चों को देखें तो हमें ये पता चलेगा कि उनमें कितनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, वो हर चीज़ को सीखने के नज़रिए से देखते हैं। तभी ये साइंटिस्ट का भी कहना है कि बेबीज़ सबसे ज़्यादा लर्न करती है, क्योंकि वो हमेशा उनके अंदर एक अर्ज होती है सीखने की, जो कि अक्सर ये देखा गया है कि उम्र के साथ साथ हमारी ये अर्ज, हमारी ये सीखने की चाह कम होने लगती है। और अगर हम इसे दिमाग के लेवल पर भी देखें, अगर हम क्यूरियस नहीं होंगे, अगर हमें नई नई चीज़ें जानने की इच्छा नहीं होगी तो हमारा ब्रेन भी ग्रो नहीं करेगा और हमारे ब्रेन की कंडीशन जो पहले थी वो अभी भी वही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। होप हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे इस रूल्स को और देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है ब्रेन में, क्या इंप्रूवमेंट आता है ब्रेन में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।